ओम शांति, ओम शांति। रोज रोज बाबा हम बच्चों को नया टाइटल देते हैं। आज भी बाबा ने नया टाइटल दिया है, तुम हो रूहानी पंडे। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है और हम बच्चों को रूहानी पंडा बनाते हैं। और फिर हमारा कर्तव्य क्या है? दूसरों को रूहानी पंडा बनाना। पंडे कहाँ ले जाएंगे? वो पंडे तो यात्राओं पर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम रूहानी पंडा कहाँ ले जाते हो? अमरपुरी में ले जाते हो। तो अमरनाथ बाबा आकर हमें अमरपुरी का रास्ता बताते हैं। और फिर बाबा कहते हैं, तुमको भी औरों को रास्ता बताना है और सबको उस अमरपुरी में जाना है। परम धाम को अमरपुरी भी बाबा कहते हैं। शांति धाम तो है ही, लेकिन वो अमरपुरी है क्योंकि अमर आत्मा ही वहां रहती है। तो बाबा कहते हैं, ये इतना निश्चय होना चाहिए कि वो अमरनाथ बाबा आया है हम सबको अमरपुरी में ले जाने। तो इस निश्चय में कभी भी ढीले नहीं बनना है। और ये निश्चय होगा तो फिर नशा भी चढ़ेगा। अगर निश्चय ही नहीं होगा तो फिर नशा भी नहीं चढ़ेगा। क्योंकि जो भी बाबा श्रीमत देते हैं उन सब में निश्चय रखना जरूरी है, तब जो बाबा की बातें हम सुनते हैं उसका नशा चढ़ेगा। और नशा नहीं चढ़ता है तो अवश्य कहां निश्चय में भी कमी है। तो इसीलिए निश्चय से नशा चढ़ता है और नशा रहने से अवश्य निश्चित है कि हम वहां पहुंचेंगे। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि हम ना पहुंचे, सबको जाना है, कोई उसको रोक नहीं सकता। जो ड्रामा में निश्चित है वो होकर ही रहेगा। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, क्या क्यों तो नहीं पूछना है, लेकिन निराश भी नहीं होना है। निराश हो जाते जिसको बाबा कहते हार्ट फेल हो जाते, अरे ये कैसे हो गया। तो सब कुछ निश्चित समझेंगे तो कभी भी हार्ट फेल नहीं होंगे, यानी निराश नहीं होंगे। और साक्षी होकर ड्रामा के हर खेल को देखेंगे। तो आज बाबा ने निश्चय का भी बल भरा है तो नशा भी चढ़ाया है और साथ साथ निश्चित निश्चिंत भी किया है, क्योंकि भावी निश्चित है इसीलिए निश्चिंत भी रहना है। तो निश्चय, नशा, निश्चित, निश्चिंत, ये शब्द सदा याद रखो। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 16/9/2025 है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। शांति धाम है अमरपुरी। तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन सा निश्चय के बोल बोलते हो? क्योंकि निश्चय होगा तो नशा चढ़ेगा और नशा होगा तो उस निश्चय के हम बोल भी बोलेंगे। तो तुम बच्चों को कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर है, तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं, है ना? ये नशा, बाबा की याद से हम जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, नशा तो है ये, इसीलिए निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, बहुत विघ्न आए यज्ञ में, लेकिन कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। निश्चित है कि स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, निश्चित है, अवश्यंभावी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। इसलिए जो बाबा कहते हैं उसमें पूरा निश्चय रखो, क्योंकि भगवान सत्य है, सत्य परमात्मा कोई गलत बात या झूठ बात तो नहीं बताएगा, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। सबसे पहला निश्चय, हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं रूहानी पंडे और बनाते भी हैं, औरों को भी बनाते हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है, ये बातें भूल जाते हैं। माया का तूफान आता है कि हम रूहानी पंडे हैं। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रत्न, अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये मुरली क्या है? अमूल्य रत्न, जो सवेरे सवेरे हमारे अमूल्य जीवन के लिए ये अमूल्य रत्न रूहानी बाप हमें देते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा, जो बाबा सुनाते हैं वो है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र भी बन रहे हो, कथा सुनते हो तो पवित्र भी बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? अमरपुरी में जाना है तो पवित्र तो बनना ही पड़े, अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी ही कहेंगे, क्योंकि वहां भी देह स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो वो भी जैसे अमरपुरी, अमर है देवताएं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अब अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है, अमरनाथ के अब केवल अकेला थोड़ी रहेगा अमरपुरी में या परमधाम में, कितने बच्चे हैं ना उनके, तो अकेला अमरनाथ थोड़ी होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी में जा रही हो, वो है आत्माओं की अमरपुरी परमधाम। फिर अमरपुरी में आते हो शरीर के साथ, स्वर्ग में आते हो, स्वर्ग भी अमरपुरी है, तो जाते हो अमरपुरी परमधाम में, फिर अमरपुरी में आते हो शरीर के साथ, जाते हो शरीर रहित, शरीर छोड़ के जाते हो, फिर आते हो शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं अमरपुरी में? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं, उसको अमरपुरी के भी कहते हैं, परंतु राइट नाम अमरपुरी, तो बाबा कहते राइट नाम है शांति धाम, क्योंकि सब आत्माएं वहां शांति में रहती है, तो राइट नाम है शांति धाम। वहां तो सबको जाना ही है, ड्रामा की भावी टाली नाही तले। कोई कहे हम नहीं जाएं परम धाम अमरपुरी में, हम सीधा यहां से स्वर्ग में चले जाएं, बाबा कहते ये भी हो नहीं सकता, सबको परम धाम जाना ही है। भावी टाली नाही तले, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। तो पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो, और बातें बाद में। पहली बात अपने को आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परम आत्मा कहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर हमें आए हैं पावन बनाकर घर ले जाने। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या श्रीमत देते हैं कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है, बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना। तो बाबा कहते हैं तुम तो बच्चे हो ना, तो बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार होना है, बिना याद के बेड़ा पार नहीं होना है। इस विषय नगरी से, ये संसार क्या है, विषय नगरी, इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे। विष और शिव दोनों एक दो के विरोधी है। शिव को अपोजिट करो तो विष, विष को अपोजिट करो तो शिव। तो बाबा कहते हैं इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहां के लिए, यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई यहाँ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वहां के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वहां के लिए पढ़ रहे हैं, माना वहां के राजाएं सत्यों के राजाएं बनने लिए, यहाँ के राजा नहीं बनना है। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं, और हम राजाएं जो बनते हैं भविष्य में वो कौन सा धन दान करते हैं, ज्ञान रत्नों का धन। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं। कोई है, कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। तो बाबा को सिंध हैदराबाद में एक मूलचंद थे, तो मूलचंद बहुत धनी भी थे तो बहुत दानी थे। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करता था, बहुत नाम था उसका मूलचंद, तो गरीबों के पास जाकर दान करता था, गरीबों की बहुत संभाल करता था। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, दान करने लिए अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। पर आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, आजकल ये सब कहाँ इतना होता है जैसे पहले करते थे। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, तो पात्र को दान देना चाहिए। चलो दान करते भी हैं, पर जरूरी नहीं है जिसको दान करते हैं वो कोई उसके लिए सचमुच वो गरीब है। कई बाबा ने कहा है ऐसे भी हैं भिखारी के दिखावा करते हैं, और देखो तो उनके पास लाखों की मिल्कियत बन जाती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ठगी है, आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, तो पात्र को दान देना चाहिए। वो अक्ल तो है नहीं कि पात्र कौन सा है, कुपात्र कौन सा है, किसको दान करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। आजकल तो बिजनेस हो गई है, ये भी एक व्यापार हो गया है। वो अक्ल तो है नहीं, तो बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना ये भी कोई दान नहीं है। ऐसे नहीं भीख भिखारी है तो हम बैठ के उनको दान देवे, बाबा कहते हैं वो भी कोई दान नहीं है। उन्हों का तो ये धंधा है, सचमुच धंधा बन गया। इसलिए सरकार भी कहते हैं ऐसे मत दो किसी को, उन्हों का तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो, म्यूजियम प्रदर्शनी खोलते हो तो क्या नाम लिखो, जो सिद्ध हो जाए कि गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। हम कौन है? गाइड टू हेवन, स्वर्ग में ले जाने वाले गाइड्स हैं, या राजधानी के हम गाइड्स हैं। तो इसलिए बाबा लिखवाते थे गेटवे टू हेवन, गेटवे टू पैराडाइज। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। हाँ कुछ भी लिखो, चलो पढ़ भी लेंगे गेटवे टू पैराडाइज, पर क्या समझेंगे? ये है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहां देवताएं रहते हैं। तो तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, निश्चय के बाद फिर नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। है ना नशा? बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, पवित्रता में तो बहुत विघ्न पड़ते हैं ना, खास सारा संगम युग में विघ्न ही पड़ते आए हैं पवित्रता के कारण। भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कोई उसको रोक नहीं सकेगा, विनाश को भी कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। या है तो नहीं किसी को संशय? उस समय होगा किसी को, तो बाबा को वाइब्रेशंस पहुंचे होंगे कि इनको संशय है, तो पर बाबा फिर शिक्षा देते हैं किसी को भी इसमें संशय नहीं होना चाहिए। ये तो सब कहते हैं, क्या कहते हैं सब, कि परमात्मा पतित पावन है। अंग्रेजी में भी कहते हैं हाँ ओ गॉड द लिबरेटर, ऐसे भी कहते हैं, फिर पुकारते हैं कि ओ लिबरेटर आकर के हमको दुख से लिबरेट करो, मुक्त करो। तो दुख है ही, किसमें दुख है? पांच विकारों में, जहां ये विकार है वहां दुख है। वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ है, वो क्या समझते हैं? स्वर्ग ऊपर है। तो मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को ये पता ही नहीं है कि ऊपर में क्या है। स्वर्ग ऊपर में नहीं है तो ऊपर में क्या है उन्हों को पता ही नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। स्वर्ग ऊपर में नहीं है, मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग में तो यहाँ ही आना है, फिर वापस यहाँ ही आना है। ये बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट्स भी घर में ये ख्याल करते रहते हैं ना, जो स्कूल में पढ़ते हैं फिर उसका होमवर्क मिलता है, तो फिर घर जाकर भी वो होमवर्क को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, ये पेपर भर कर देना है, कल एग्जाम है, ये पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। हाँ बच्चों को भी ख्याल रहता है जो स्टूडेंट्स हैं। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, अपने ही कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र वन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनना है। पवित्र बनना है, फिर मुक्ति धाम जाना है, फिर देवता बनना है नॉलेज से। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, पढ़ाई करता है कोई व्यक्ति, वकालत पढ़ता है तो कहेगा कि हम, आत्मा कहती है हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। कोई भी पद लेते तो कौन लेता है वो पद, शरीर तो नहीं ना, आत्मा लेती है शरीर के द्वारा। तो हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं, आत्मा बनती है शरीर के साथ। गवर्नर बनी, बैरिस्टर बनी, कुछ भी बनी, डॉक्टर बनी, आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नई सिर पढ़ना पड़ता है। अब डॉक्टरी पढ़ी, खूब पढ़ाई की, बहुत डिग्रियां ली और मर गया, अगले जन्म में थोड़ी कोई डॉक्टर बन के जन्म लेगा, उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नई सिर पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। तो बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम कौन है, आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा। यहाँ बाबा हम बच्चों को कहते हैं ये पक्का याद कर लो हम आत्मा है। अब सतयुग में देवताओं को थोड़ी कहेंगे पक्का याद कर लो हम आत्मा है, वहां तो आत्माभिमानी नेचुरल रूप में ही है। पर यहाँ कहना पड़ता है अपने को आत्मा समझो, क्योंकि देह अभिमान में है। बाबा कहते देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता है, उन याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन न। उनको ये कहना पड़ता है देवताओं को कि तुम आत्मा हो, न ये कहना पड़ता है अब आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो, वो भी देवताओं को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो है ही पावन। ये तो पावन बनने के लिए कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। याद उनको नहीं दिलाना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़ी है जो वो बाप को याद करे। तो किसको याद करना है, बाप को, जो पतित है। तो वो देवताएं पतित थोड़ी है जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो इसलिए बाप को याद करना है पावन बनने लिए। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है, देवताएं क्यों याद करेंगे। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। क्या है इस ड्रामा की विशेषता, एक भी दिन एक समान नहीं होता। कल अलग ही दिन था, आज अलग ही दिन है, वास्तव में हर घड़ी एक समान नहीं होती है, कुछ न कुछ फर्क होता है। बाबा कहते हैं एक भी दिन एक समान नहीं होता, ये ड्रामा चलता रहता है। तो सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है, शूट होता रहता है, वो उस रील बनती जाती है। तो हर सीन उस रील में थोड़ा थोड़ा तो अंतर होगा 19-20 का। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कोई भी बात में हार्ट फेल नहीं हो, कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया, बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है। ये ज्ञान की बात है, क्योंकि कुछ भी नई बात नहीं है, तो इसीलिए घबराना नहीं, डरना नहीं, आश्चर्य नहीं खाना, इसलिए बाबा कहते स्थिर प्रज्ञ। तो कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, बाबा मना नहीं करते, धंधा आदि करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, कुमारियां तो ग्रस्त में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है, बाबा उनका डेफिनेशन देते, गृहस्थी किसको कहा जाता है, जिनको बाल बच्चे हैं। गृहस्थी कुमारियां तो कुमारियां हैं, पवित्र कुमारियां हैं, तो गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी माना गृहस्थी बाल बच्चों वाली, तो कुमारी माना जो कुमारी है, बाल बच्चे कोई नहीं है। तो बाबा कहते बाबा तो सबको पढ़ाते हैं, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अधर कन्या, हाँ अधर कुमारी मंदिर है ना यहाँ, अधर कन्या का मंदिर, अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते हैं। तो क्या अधर कुमारी का अर्थ क्या हुआ, क्या आधा शरीर है, अधर माना अर्ध आधा, तो क्या आधा शरीर है। अभी तुम जानते हो कन्या तो पवित्र है और अधर कन्या, अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है, बच्चे पैदा किए फिर पवित्र बनती है, तो उनको फिर अधर कन्या कहेंगे। तुम्हारी ही ये यादगार खड़ी है, अधर कन्या का मंदिर देखा है सभी दिन गए हैं, अधर कुमारी इतनी सीढ़ियां चढ़ करके जो गई, अधर कुमारी का मंदिर देखा है, हाथ उठाओ। अच्छा देखा ही नहीं है, कितना नजदीक है, यहाँ 5 मिनट की दूरी पर है, सीढ़ियां खूब चढ़नी होती है, और वहां देवी है तो वो देवी दिखाई है, वो एकदम झुक करके जाना पड़ता है, गुफा है वो गुफा के अंदर जाना पड़ता है, तो उसमें भी दिखा है कई ऐसी छोटी मूर्तियां, उनको बच्चा है गोद में, तो अधर कुमारी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। कन्याओं के तो बहुत मंदिर है, सब देवियां तो कन्याएं ही दिखाते हैं, पर अधर कुमारी का भी मंदिर है, तो माताओं को खुश होना चाहिए, हमारा भी मंदिर है अधर कन्याओं का भी मंदिर है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं वो सब जानते हैं। क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, धनुष बाण श्री रामचंद्र को दिखाते, तो क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है ये भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है ना, कोई लड़ाई करने के लिए कोई तीर कमान नहीं उठाया श्री राम ने, लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है, वे रावण सीता को चुरा के ले गया, बाबा कहते वो भी बात सिद्ध नहीं होती है, तो न लड़ाई की बात है, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है, ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो, क्या समझते हो, हम है हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के पंडे, क्या है हम सभी मुक्ति जीवन मुक्ति धाम के पंडे, अमरपुरी के पंडे, स्वर्ग के पंडे, वो है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे, वो है कलयुगी ब्राह्मण, वो पंडे भी ब्राह्मण ही होते हैं, पर वो बाबा कहते हैं वो पंडे ब्राह्मण वो ले जाते हैं यात्राओं पर, वो है कलयुगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी बच्चे क्या करते हैं, बाबा अनेक रीति से समझाते रहते हैं ताकि बच्चे भूले नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। हाँ, बाबा को हम कहे कि बाबा नहीं हम नहीं बोलते हैं, फिर भी बाबा कहते देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, ये नशा रहता ही नहीं है, भूल जाते हैं तो बाबा कहते नशा ही जैसे उड़ जाता है, ये नशा ही रहता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं और बाप का बच्चा हूं। तो जितना याद करते रहेंगे उतना क्या होगा, देह अभिमान टूटता जाएगा। तो देह अभिमान आता रहता है माना बाबा की याद नहीं है, तो जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, संभाल, बाबा कहते हैं देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर क्या होगा, अभी हम जा रहे हैं घर, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। हीरो हीरोइन तो सबसे शुरू में ही आ जाते हैं ना फिल्म में, ऐसे नहीं कि आधे के बाद हीरो हीरोइन आते हैं, शुरू से ही उनकी कहानी होती है, उनके ऊपर ही सारी कहानी होती है हीरो हीरोइन की। तो बाबा कहते हैं हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है, कब पड़ता है हीरो हीरोइन किसी का नाम, जब कोई विजय पाते हैं, होता है ना, विजय भी पाया तो भी कहता ये हीरो नंबर वन, ये हीरो है। तो हीरो हीरोइन का पार्ट नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं, तो उन्होंने भी विजय पाई तो हीरो हीरोइन बन गए लक्ष्मी नारायण। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। ड्रामा में हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है क्योंकि शुरू से हम आते हैं पार्ट बजाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंच से ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है, हीरो हीरोइन है हीरा, और बाकी जो और छोटे छोटे होंगे एक्टर तो वो तो कौड़ी जैसे, उनको तनख्वाह भी कम, पैसा भी उतना ही मिलेगा, हीरो हीरोइन को तो करोड़ों मिलते हैं। तो कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो क्या कि ये सब विनाश हो जाएंगे। अभी का करोड़पति कोई सत्युग का करोड़पति बनेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों तो यहीं विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी तो सब देवालय में जा रहे हैं। ये और बड़ी बात, तुम बच्चे धनवान बनते जा रहे हो और बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। वो धन में धनवान नहीं बन रहे हो, ज्ञान धन इतना इकट्ठा करते हो जिससे इतने मालामाल धनवान बन जाएंगे, और वो तो स्थूल धन जमा करते हैं, और वो तो सब मिट्टी में मिल जाना है, वो तो साथ में आना नहीं है, इसलिए वो देवाला मारते जा रहे हैं। तो तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। ये यहाँ नशा चढ़ता है, हाँ निश्चय होगा तो नशा यहाँ चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है, यहाँ की बातें यहाँ ही रह जाती है, हो जाता है ना कई बार, तो यहाँ से गए बाहर गए, फिर वो बस में बैठे टैक्सी में बैठे गए, धीरे धीरे नीचे गए, आबू रोड स्टेशन पर पहुंचे, नशा उतर गया। बाबा कहते ऐसा भी कई बार होता है, यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। तो बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। अब इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है, पढ़ाई भी कितनी सहज है। बाबा कहते बस एक घंटा दो रोज सवेरे सवेरे, क्या तकलीफ है, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो, ये भी अपने लिए धंधा है ना, धंधा है ये, याद का धंधा है ना, कमाई कर रहे हैं, तो इस कमाई में भी तो बरकत पड़ती है ना जितना याद करते हैं। तो सारा दिन अभी अपने लिए धंधा करना है, छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, ऐसे भी करो, कई आते हैं छुट्टी लेकर 3 दिन के लिए आते, तपस्या करना है, तो बाबा कहते छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। कोई अगर जाए कहते ना नौकरी से थोड़ा 3 दिन छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए छुट्टी, हमको हाँ तपस्या करनी है, तो तपस्या में धंधा ही तो है ना, ये पर कमाई होती है, तो ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ी गंवाना है, हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें, भविष्य का ख्याल करना है, हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियां तो बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं, ये धंधा करो, सबको संदेश दो कि हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तो तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे, सबको राय देते हो, राय राय बहादुर बाबा ने कई बार कहा बच्चों को, बच्चे राय बहादुर है, तो वजीर राय के लिए होते हैं, वजीर होता है ना, तो द्वापर कलयुग में वजीर क्यों होते हैं, एडवाइजर, तो एडवाइजर टू द किंग, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, अभी भी है, तो मंत्री जो है वो मंत्री भी एडवाइजर है, मंत्र देते हैं। ये मंत्री शब्द भी कहाँ से आया, मंत्र शब्द से आया, और मंत्र शब्द कहाँ से आया, मंत्रणा, मंत्रणा माना कोई राय देना, कोई सलाह कर देना, आपस में मिलते हैं मंत्रणा करते हैं, एक दो को राय देते हैं, तो इसीलिए मंत्रणा से मंत्र आया, मंत्र से मंत्री आया। तो बाबा कहते हैं वजीर राय के लिए होते हैं ना, तो तुम भी वजीर हो, एडवाइजर हो, क्या एडवाइस देते हो, कौन सी एडवाइस देते हो, कौन सा मंत्र देते हो, कौन सा रास्ता दिखाते हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो आगे के जन्मों के लिए, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं, जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, हम लोग भी वैसे जो बोर्ड पर लिखते थे बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं, केवल ऐसे लिख दिया था, अर्थ बताना पड़े, बी होली पवित्र बनो, राजयोगी बनो, बाबा कहते ऐसे नहीं समझेंगे, इसमें समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है, मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर के राय देता हूँ, पावन बनने की राय देता हूँ, पावन बनने की राय देता हूँ, तुम भी एडवाइजर हो, सबको ये राय देते हो। मुक्ति धाम में कोई भी ऐसे जा नहीं सकते जब तक पवित्र न बने हैं, जब तक बाप एडवाइज न करे, श्रीमत न दे, तब तक बीच में कोई भी जा नहीं सकता परम धाम। मुक्ति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक एक बाप एडवाइज न करे, श्रीमत न दे कि मुझे याद करो, श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही श्री श्री शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप शरीर तो नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा न पाप कर सकती न पुण्य कर सकती है, शरीर भी शरीर है ही नहीं तो न पाप होगा न पुण्य होगा, तो परम धाम में न पाप है न पुण्य है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो, टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए। हाँ लौकिक में टीचर है या प्रोफेसर है कॉलेज में, बाबा कहते हैं तो आप ये टीचर प्रोफेसर हो अपने बच्चों को पढ़ाते हो, तो बाबा कहते उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, चलो यहाँ आप पढ़ाते हो तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन केवल इस लौकिक पढ़ाई से तो कोई भविष्य नहीं बनेगा ना। तो इसलिए केवल इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम ये पढ़ते हैं रूहानी पढ़ाई। बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है तो अंदर उछल आती रहेगी, उछल आनी चाहिए। क्या कि कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं, सच्चे सच्चे रूहानी पंडे बने, तो उछल आनी चाहिए। एक बच्ची को, अभी बाबा बता रहे हैं, एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी। हमारी वेदांती बहन है तो वो हमेशा अपनी ये कहानी बताती है और बाबा ने उसका मुरली में जिक्र किया है। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है। वो एमए कर रही थी, फिलोसॉफी का पेपर था, तो फिलोसॉफी में तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे, तो पूछा होगा कि गीता का भगवान कौन है, तो उसने शिव लिख दिया। तो गीता का भगवान शिव है तो उनको नापास कर दिया ना, पेपर में फेल कर दिया, उसने शिव लिखा। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ, गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है, ऐसे उसने लिखा। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है, ये उसने लिखा होगा उस पेपर में। अब ये जैसे ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को फिर उसने कहा अब मैं फेल हो गई एमए में, तो अभी मुझे आगे नहीं पढ़ना है, मैंने तो सच लिखा और हमको फेल कर दिया। देखो बाबा उसके ऊपर क्या बता रहे हैं। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी, माँ बाप को कहा। तो बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, अभी तो देखो अफ्रीका का पूरा कितना कंट्रोल कर रही है और बाहर भी जाती रहती है, ऐसे नहीं कि खाली अफ्रीका में रहती है। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी। बाबा को उसने कहा, साकार बाबा से जब मिली तो बाबा को कहा कि बाबा मैं एमए कर रही हूँ फिलोसॉफी में, तो बाबा मैं ऐसे लिखूंगी गीता का भगवान शिव है। तो पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी, तो कोई बात नहीं, नापास हो गई कोई बात नहीं, फेल हो गई कहा जाने, परंतु सच तो लिखना है ना, उनकी भी आंखें खोलनी है, सच तो लिखना है ना। तो बाबा कहते आगे चलकर वो समझेंगे, जिन्होंने पेपर करेक्ट किया होगा वो आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता करे। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। उनके प्रोफेसर भी आएंगे जिन्होंने उसका पेपर करेक्ट किया होगा, वो आकर के सुनेंगे कि बरोबर ये तो राइट है, गीता का भगवान शिव है, तो बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। तो ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, क्या विचार करना है, ऐसा क्या करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात नहीं है। कलब पहले भी समझी थी, हमारे जो म्यूजियम है ना, तो म्यूजियम का उद्घाटन स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने किया था 69 में। हाँ बाबा आए थे मई जून में, वो म्यूजियम का उद्घाटन किया बाबा ने। तो उद्घाटन करके बाबा जो पहला जो है ना कमरा जिसमें सब चित्र लगे हुए हैं, उसमें चक्र का भी चित्र है, झाड़ का भी चित्र है, और फिर दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ थोड़ी छोटी थोड़ी स्पेस थी। तो अव्यक्त बाबा ने करेक्शन किया कि यहाँ लिख दो कि पांच ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही देखा था, फिर आप ऐसे देखेंगे, ये लिख दो। उस समय करेक्शन किया, वेग बाप दादा ने करेक्शन किया। और सचमुच आप जाएंगे म्यूजियम में, वो पहले जो पहला कमरा जो है उसमें साइड में लिखा हुआ है, उसके बाद फिर दूसरे कमरे में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई जो यहाँ, बाबा कहते हैं तो ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना चाहिए, ऐसा क्या करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात नहीं है। कोई न कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे, हाँ ये नई बात नहीं है। तुम सबको रूहानी, बाबा ने कुछ और, ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या करे जो मनुष्य झट समझ जाए ये कोई नई बात है, यानी गीता का भगवान शिव है ये समझे ये नई बात है। कोई न कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बिचारे कितने दुखी हैं, उन सब को दुख से कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना दुनिया में, कितनी खिटपिट है, कितना दुख है संसार में। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं, एक दो का दुश्मन बन उनको खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बिचारी अबोध होती है, हाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी बाद माताएं, अबोध होती है, कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं है। तो बाप कहते हैं नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, वो वेद शास्त्र जो जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ भूल जाना है। हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक होता है लर्निंग, फिर दूसरा होता है अनलर्निंग, जो पढ़ा है उसको भूल जाना है अनलर्निंग। तो ये अनलर्निंग करना है जो भी शास्त्रों की बातें हैं। तो माताएं तो बिचारी अबोध होती है, कहती हम पढ़ी लिखी नहीं है, तो बाप कहते नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हो वो सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो, तो समझाना चाहिए कि सदगति निराकार परम पिता परमात्मा के बिगर कोई कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं है तो वो फिर सदगति कैसे कर सकते हैं। सदगति दाता तो ज्ञान का सागर एक ही है, मनुष्य ऐसा थोड़ी कहेंगे कि ज्ञान का सागर सदगति दाता एक ही है। जो यहाँ के होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। अभी तो बहुत आते हैं ना VIPs, कितने आते हैं नीचे कॉन्फ्रेंस में भी, जरूर कोई आते ही रहते हैं। तो एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है बेचारी, जो गरीब है वो अगर किसी को सुनाते उनकी कौन सुनता है, न उनका कोई आवाज होता है। बड़े आदमी का आवाज होगा, अखबारों में आएगा। तो गरीबों के लिए क्या कहा जाता है, गायन है तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात। तुलसीदास कितना सुनाता था लेकिन उसकी बात कोई सुनता नहीं था। तो तुलसीदास गरीब की कोई न सुने बात, तो गरीबों की नहीं सुनेंगे, पर जो अच्छी पोस्ट पर होगा वो जो कहेगा सब सुनेंगे। तो सर्विस की युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। हाँ अभी तो बहुत बड़े बड़े VIPs भी माइक बन गए, माइक अच्छी तरह से बन करके बाबा का प्रचार करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरा, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, राय सलाह दें, घर का रास्ता बताएं, सबको ये राय दे, ये कैसे, हाँ बाबा कहते उछल आनी चाहिए बताने लिए, घर का रास्ता बताएं। वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। एक एक संबंध का सहयोग लेना बाबा से, तो ये बाबा कहते वो अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो। माता पिता, बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, स्वामी, सब संबंधों का बाबा कहते हैं सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ के अंतर्गत तपस्वी मूरत का अर्थ है। तपस्वी मूरत किसको कहेंगे? तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। बहुत बड़ी ये तपस्या है, बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव कराना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से योग भट्टी शुरू हो रही है। कलकत्ता राय बगान स्ट्रीट से भाई बहने आए हैं, कोई तो पहुंच गए हैं, जो पहुंच गए हैं हाथ उठाएं। राय बगान स्ट्रीट से देखो, कलकत्ता से कितना दूर से आए हैं भाई, ताली बजाओ इनके लिए। इनकी टीचर्स कौन है, कौन आई है? ये क्या नाम आपका? पूनम बहन। अच्छा, पूनम बहन यहाँ पर हमारी बिंदु बहन थी, बहुत पुरानी बहन, उसने शरीर छोड़ा ना, तो आप संभालते हैं राय बगान से। तो सब टीचर्स खड़ी हो जाओ जो अभी आई है टीचर्स राय बगान से। चलो, आपको भी मुबारक हो, इतना दूर से इतना बड़ा ग्रुप लेकर के आई है भट्टी के लिए, और ये अंतिम भट्टी है इस सीजन की। हाँ बस, ये लास्ट भट्टी है। कितनी भट्टियाँ हो गई है पांडव भवन में, तो आपकी हो गई। आपने कितने समय से अर्जी डाली होगी? बहुत समय से, तो आपकी अर्जी की मंजूरी हो गई। बहुत अच्छा। तो आज शाम से आपकी भट्टी शुरू होगी, शाम को 5 बजे आप सभी आएंगे मेडिटेशन हॉल में, और आप सबका नाश्ता भोजन दिन का रात का सब बड़े डाइनिंग हॉल में है, वहीं भोजन करना है। और आप सबको अपने बोर्ड पर भी पढ़ा होगा, आज सुबह 11 बजे मेडिटेशन हॉल में मधुबन के सभी समर्पित व ट्रायल वाले भाई बहनों सहित ग्लोबल हॉस्पिटल के भी समर्पित सभी को आना है मेडिटेशन हॉल में, जहां आपको ट्रांसपोर्ट विंग की सिल्वर जुबली के निमित्त दिव्या बहन बोरेवली वाली, क्योंकि ट्रांसपोर्ट विंग को 25 साल हो गए, तो इसके निमित्त दिव्या बहन के द्वारा आपको याद सौगात मिलेगी। मधुबन निवासी और ट्रायल वाले भी और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने 11 बजे मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे। तो सिल्वर जुबली मना रही है हमारी दिव्या बहन, ट्रांसपोर्ट विंग की बहुत सेवाएं होती है ट्रांसपोर्ट विंग द्वारा। ओम शांति।